ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंध पहला अध्याय समदर्शी भगवान श्लोक संख्या 6। निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्वमाया गुणमावेश्य बाध्य बाधकतां गतः निर्गुणो पिह्य ह्यजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः। स्वमाया गुणमावेश्य बाध्य बाधकतां गतः निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः। स्वमाया गुणमावेश्य बाध्य बाधकतां गतः मैं श्लोकों का उच्चारण पुनः करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। दो बातें, एक शब्दों का उच्चारण ठीक होना है, दूसरी बात श्लोक संपूर्ण कहना है विसर्ग के साथ, तीसरी बात जिस धुन में वक्ता श्लोक को कहते हैं या गाते हैं प्रयास करना चाहिए उसी धुन में गाने के लिए, ठीक है। और जब तक वक्ता श्लोक के पादों का उच्चारण समाप्त न करे तब तक श्रोताओं को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। निर्गुणो ह्यपि, ठीक 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 है, निर्गुणो ह्यजो व्यक्तो निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः। स्वमाया गुणमावेश्य बाध्य बाधकतां गतः निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः। स्वमाया गुणमावेश्य बाध्य बाधकतां गतः धन्यवाद। निर्गुणः भौतिक गुणों से रहित, अपि यद्यपि हि निश्चय ही अजह अजन्मा अव्यक्तः अप्रकट भगवान परमेश्वर प्रकृतेः भौतिक प्रकृति से परः दिव्य स्वमाया अपनी शक्ति के गुणम भौतिक गुण में आविश्य प्रवेश करके बाध्य बाध्य बाधकताम बाध्य होने की स्थिति गतः स्वीकार करता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान विष्णु सदा भौतिक गुणों से पर रहने वाले हैं, अतएव वे निर्गुण कहलाते हैं। अजन्मा होने के कारण उनका शरीर राग तथा द्वेष से प्रभावित नहीं होता। यद्यपि भगवान सदैव भौतिक जगत से ऊपर हैं, किंतु अपनी आध्यात्मिक पराशक्ति से वे प्रकट हुए और बद्ध जीव की भांति कर्तव्यों तथा दायित्वों को ऊपर से स्वीकार करके उन्होंने सामान्य मनुष्य की भांति कार्य किया। तात्पर्य तथा कथित आसक्ति विरक्ति तथा दायित्व बाध्यताएं उस भौतिक प्रकृति से संबंधित हैं जो भगवान से उद्भूत हैं, किंतु जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होकर कर्म करते हैं तो वे अपने आध्यात्मिक पद पर स्थित होकर ऐसा करते हैं। यद्यपि भौतिक दृष्टि से उनके कार्यकलाप भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु वे परम तथा अभिन्न होते हैं। अतएव यह कहना कि वे किसी से ईर्ष्या करते हैं या मित्रता बरतते हैं परमेश्वर पर दोषारोपण करना है। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। इस धरा पर या कि इस ब्रह्मांड के भीतर कृष्ण अपने आध्यात्मिक शरीर या आध्यात्मिक गुणों में किसी परिवर्तन के बिना प्रकट होते हैं। निस्संदेह वे कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, वे ऐसे गुणों से सदा मुक्त रहते हैं, किंतु प्रतीत ऐसा होता है कि वे भौतिक गुणों से प्रभावित हैं। यह आरोपित समझ है। अतएव कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम्। वे जो भी करते हैं सदैव दिव्य होने के कारण उसे भौतिक गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। एवं यो वेति तत्वतः, वे जिस तरह के कर्म करते हैं उसे केवल भक्तगण ही समझ सकते हैं। तथ्य तो यह है कि कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, वे सबों के लिए समभाव रखते हैं। लेकिन भौतिक गुणों से प्रभावित अपूर्ण दृष्टि के कारण लोग कृष्ण पर भौतिक गुणों का आरोप करते हैं, और जब कोई ऐसा करता है तो वह मूढ़ या मूर्ख बन जाता है। जब कोई सत्य को ठीक से समझ लेता है तो वह भक्त तथा भौतिक गुणों से मुक्त अर्थात निर्गुण बन जाता है। मात्र कृष्ण के कार्यकलापों को समझकर कोई दिव्य बन सकता है, और ज्यों ही वह दिव्य बन जाता है तो वह दिव्य जगत में जाने के योग्य बन जाता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो भगवान के कार्यकलापों को ठीक से समझता है वह शरीर त्यागने के बाद दिव्य जगत वैकुंठ को चला जाता है। हरे कृष्णा। तो सातवें स्कंद की शुरुआत है और प्रसंग ये चल रहा है कि महाराज परीक्षित के मन में संदेह उत्पन्न हुआ है और संदेह ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव और अन्य देवताओं का साथ दिया, देवताओं के शत्रुओं का अर्थात असुरों का वध किया, जैसे कि छठे स्कंद में वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर चुके हैं। परीक्षित महाराज इस वर्णन को ध्यान से सुन चुके हैं। फिर वो सोचने लगते हैं, वैसे तो भगवान की दृष्टि समान होनी चाहिए सबके प्रति, असुर हों या देवता हों, सब भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान के अंश ही हैं, तो ऐसे क्यों हुआ और ऐसे क्यों अक्सर होते रहता है कि भगवान देवताओं का पक्ष स्वीकार करते हैं और असुरों का वध करते हैं, तो क्या ये पक्षपात नहीं होता? और भगवान को इस तरह पक्षपात करना क्या उचित है? या कैसे कर सकते हैं भगवान पक्षपात? मेरे लिए ये एक भ्रम का विषय है। भगवान तो वैसे आध्यात्मिक स्तर में सदैव स्थित हैं, तो वो कभी भी पक्षपात नहीं कर सकते। परंतु दूसरी ओर हम देखते हैं कि देवताओं के पक्ष में आकर वो असुरों का वध करते हैं, तो एक तरह का विरोधाभास लग रहा है। तो कैसे इसका समन्वय किया जाए? कैसे ये समझ लें कि भगवान असुरों का वध करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं एक ओर, और दूसरी ओर वो संपूर्ण परम सत्य हैं, पक्षपात कभी नहीं करते हैं, पक्षपात के परे हैं वो, तो कैसे इस चीज को समझ लेना चाहिए? तो महाराज परीक्षित अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी जी के सामने अपना ये महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्न रखते हैं और ऐसे प्रश्नों को प्रश्न करने से ही हमारे संशय नष्ट हो सकते हैं और हम सही ज्ञान में स्थित हो सकते हैं। अच्छा प्रश्न है ये। सुखदेव गोस्वामी इस अच्छे प्रश्न को सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं। देखिए, आध्यात्मिक जीवन में यह भी समझना चाहिए कि कैसे प्रश्न करने चाहिए, न कि बस मन में जो आए बस बोले गए, प्रश्न पूछे गए। नहीं, सोच समझ कर प्रश्न किए जाते हैं। हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सारे के सारे प्रश्नोत्तर हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान श्री कृष्ण सही सही उत्तर देते हैं। श्रीमद् भागवत में नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषिगण सूत गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं, सूत गोस्वामी जवाब देते हैं, और उस प्रश्नोत्तर में अनेक और प्रश्नोत्तर हैं, जैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव महाराज के बीच में संवाद। जब सुखदेव गोस्वामी अपने उत्तर दे रहे होते हैं तो वो भी इतिहास में जो महत्वपूर्ण संवाद हुए हैं उनका वर्णन करते हैं, यथा नारद मुनि और व्यास देव के नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में, नारद मुनि और व्यास देव जी के बीच में, तो ऐसे हमारा सारा आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो केवल प्रश्नोत्तरों पे आधारित है। इसलिए प्रभुपाद जी बतलाते हैं अपने भगवद गीता के तात्पर्यों में कि प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनसे कि विषय का स्पष्टीकरण हो जाए, जिनसे कि संशयों का निवारण हो जाए। न तो हमें अंधश्रद्धा रखनी चाहिए कि बस जो कहा जाए हम स्वीकार कर लेते हैं, और न ऐसे हमें करना चाहिए कि बस वक्ता की गलती निकालने के लिए कोई प्रश्न करें, या वक्ता की परीक्षा करने के लिए हम कोई प्रश्न करें, या अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए हम कोई प्रश्न करें। तो ऐसे प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए, या ऐसे प्रश्न जिनका कोई मतलब नहीं है ऐसे प्रश्न भी नहीं करने चाहिए। तो खैर, ये भी एक बड़ा विषय है कि प्रश्न कैसे होने चाहिए, परंतु राजा परीक्षित हमें दिखलाते हैं कि प्रश्न कैसे होने चाहिए। संशय उत्पन्न होना यह तो स्वाभाविक है, परंतु संशयों का निवारण करने के लिए किनके पास हमें जाना चाहिए और कैसे सवाल करने चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो जब राम महाराज परीक्षित ऐसे प्रश्न करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न होते हैं कि वो कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम। साधु पृष्ठम महाराज, हे महाराज परीक्षित, साधु पृष्ठम, आपने जो प्रश्न किए हैं बहुत सही प्रश्न किए हैं, बढ़िया प्रश्न किए हैं आपने। जब वैदिक सभ्यता में कोई किसी की प्रशंसा करना चाहता था कि आपने बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत अच्छे प्रश्न आपने किए हैं, जैसे आजकल कहते हैं वाह वाह क्या कहा, ऐसे कहते हैं ना लोग, तो संस्कृत में कहते हैं साधु साधु, साधु साधु, कितनी बढ़िया बात कही आपने, कितना सुंदर प्रश्न किया आपने। जैसे सूत गोस्वामी भी कहते हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को, मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर् लोकमंगलम् यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। कि हे मुनिवन, हे मुनिगण, आपने जो प्रश्न किए हैं वो बड़े उत्तम हैं, बढ़िया हैं, प्रथम श्रेणी के प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न करने चाहिए। मुनयः, कि हे मुनिगण, साधु पृष्टोऽहं, आपने जो प्रश्न किए हैं मुझसे वो बहुत उत्तम प्रश्न हैं। तो यहां भी सूत गोस्वामी कहते हैं साधु साधु साधु, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किए। भवद्भिर् लोकमंगलम्, आपके प्रश्नों के कारण समस्त जगत का कल्याण हो सकता है। क्यों? यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो श्री कृष्ण से संबंधित है। ये नात्मा सुप्रसीदति, और ऐसे प्रश्नों के द्वारा आत्मा की संतुष्टि हो सकती है, और ये सच्चा आनंद है। यहां पर भी सुखदेव जी ऐसे ही बात कर रहे हैं, साधु पृष्ठम महाराज, कि बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, हरेश्चरितम अद्भुतम, क्योंकि आपके प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र और कार्यकलापों के संबंध में है। यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम, और भगवान से संबंधित प्रश्न करना, इसका मतलब है कि भगवान के भक्तों के से संबंधित प्रश्न करना, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के अलावा नहीं रहते हैं, उनसे अलग नहीं होते। भगवान के भक्त सदैव भगवान के साथ रहते हैं और भगवान अपने भक्तों के साथ में रहते हैं। तो भगवान के बारे में जानना, इसका मतलब है भगवान के भक्तों के बारे में भी जानना। और ऐसे करने से, भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से, उनके बारे में प्रश्न करने से क्या होता है? सुखदेव जी कहते हैं भक्ति वर्धनम, ये भक्ति वर्धक है। ऐसे सवाल करना हमारे लिए भक्ति वर्धक है, पोषक है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो जब हम ऐसे सत्संग में आते हैं, हम श्रवण करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने भगवान और उनके भक्तों के बारे में कुछ सुना है, और यदि कोई ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो जाए अवश्य हम कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए हैं महाराज परीक्षित के ऊपर। ये भी एक प्रथा है, समझिए एक सभ्यता के अनुसार ऐसे आध्यात्मिक चर्चा में जब ऐसे कोई संवाद आदि होते हैं तो मर्यादा का पालन किया जाता है। सर्वप्रथम वक्ता का स्वागत करके व्यासपीठ पर बिठाया जाता है, श्रोतागण अपने अपने आसन भी ग्रहण कर लेते हैं, ठीक ठाक सुनने के मनोवृत्ति से आते हैं, और जैसा कि हमने घोषणा सुनी मोबाइल बंद कर लेते हैं। वैसे सुखदेव गोस्वामी के समय तो मोबाइल फोन नहीं थे, अन्यथा वो तो कह भी देते, परंतु जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे वो सब ऋषि मुनिगण थे, उनको ये मोबाइल वगैरह से क्या लेना देना। तो फिर आते हैं, फिर वक्ता का स्वागत होता है, फिर वक्ता कुछ कहते हैं या श्रोतागण कुछ प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों की प्रशंसा करते हैं वक्ता प्रसन्न चित्त से, फिर वक्ता प्रश्नों का जवाब देना शुरू करते हैं। तो ये एक मर्यादा है, एक सभ्यता है। कई बार ऐसे होता है हम लोग जब इधर उधर भ्रमण करते हैं, कहीं न कहीं से कोई ना कोई आ जाते हैं, झट करके कोई प्रश्न पूछ देते हैं, पूछने का ढंग भी सही नहीं होता। रेलगाड़ी में कोई बैठे, अचानक किसी ने पूछ लिया क्या सबूत है कि भगवान है, सामने बैठे हैं कोई पूछ लेते हैं बस। तो सभ्यता नहीं है, परंतु कैसे सवाल करने चाहिए, किस वातावरण में करने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे जैसे समाज सभ्य होते जाता है वैसे वैसे लोग समझदार होने लगते हैं इन विषयों में। तो जब इस तरह के प्रश्न होते हैं और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि समाज की सभ्यता क्षीण होती जा रही है, लोगों की चेतना दूषित होती जा रही है। तो सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के परस्पर व्यवहार से और उनके संवाद से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, न केवल ये कि कौन से प्रश्न किए गए और क्या जवाब दिए गए, परंतु इस बात से भी कि किस तरह से प्रश्न और उत्तर किए गए और दिए गए। फिर इस छठे श्लोक से महाराज या सुखदेव महाराज महाराज परीक्षित के सवालों का जवाब देंगे और इस एक प्रश्न का जवाब देंगे। और ये सारा सातवां स्कंद जो है प्राय इस एक प्रश्न पर आधारित है, बल्कि सारा श्रीमद् भागवत जो है वो महाराज परीक्षित के एक सवाल पर आधारित था और है। वो क्या है कि मृत्यु के द्वार पे खड़े हुए व्यक्ति कि क्या कर्तव्य होते हैं, उसे किस चीज के बारे में या किन विषयों के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, किन की उपासना करनी चाहिए। तो जो मृत्यु शैया पर है या मृत्यु के द्वार पे खड़ा है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मूल प्रश्न है जिस प्रश्न के ऊपर सारा श्रीमद् भागवत आधारित है, ये 18,000 श्लोक, तो एक प्रश्न कभी कभी ऐसे होता है कि उस प्रश्न के उत्तर में न जाने लंबी चर्चा होती है। तो ये प्राय संपूर्ण सातवां अध्याय इस एक प्रश्न पर आधारित है, और इसके कारण फिर हम प्रहलाद और नरसिंहदेव भगवान की कथा सुनते हैं। इसी संदर्भ में यदि परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न न किया होता तो शायद सुखदेव गोस्वामी प्रहलाद और नरसिंहदेव की कथा न कहते, कोई दूसरी कथा कह देते, शायद कह भी देते, पता नहीं। परंतु देखिए प्रश्न करने वाले की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। सही प्रश्न करने से सही उत्तर मिलते हैं और सही विषयों की चर्चा होती है, जिससे कि जो संशय है उनका निवारण हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न चित्त से उत्तर देना प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम भगवान की पहचान करा देते हैं। कहते हैं निर्गुण अपि अजह अव्यक्त है भगवान प्रकृत है परह। तो हे राजा परीक्षित, हमें सर्वप्रथम ये समझ लेना चाहिए कि भगवान कौन है, अर्थात उनके क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं उनके, भगवान कैसे पहचाने जा सकते हैं, भगवान के कौन से लक्षण होने चाहिए जिनके द्वारा वो भगवान कहलाते हैं। सबसे पहले भगवान निर्गुण हैं, और निर्गुण की परिभाषा या निर्गुण का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी यहां समझाते हैं, भौतिक गुणों से रहित। हम तो बद्ध जीव हैं, ये भौतिक गुण सत्व रजस तमस हमें बहुत परेशान करते हैं, हम बद्ध अवस्था में हैं। परंतु भगवान बद्ध नहीं हैं, वो सदैव मुक्त अवस्था में रहते हैं। तीन गुणों का प्रभाव तनिक भी उनके ऊपर नहीं होता है। दूसरी बात, अजह, वो अजन्मे हैं, उनका न कभी जन्म होता है न कभी उनकी मृत्यु होती है, शाश्वत रूप से वो अपने धाम में विद्यमान रहते हैं। प्रकृतेः परः, इस भौतिक प्रकृति के वो सदैव परे रहते हैं। स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाध्य बाधकताम गतः, अपने ही भौतिक सृष्टि के भीतर प्रवेश करते हैं। यद्यपि वो भौतिक सृष्टि के परे हैं, सदैव निर्गुण हैं, अजह हैं, अव्यक्त हैं, फिर भी समय समय पर इस भौतिक सृष्टि में वो प्रकट होते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा। स्वमाया गुणम आविश्य, और ऐसे भौतिक सृष्टि में प्रकट होकर ऐसे कार्यकलाप करते हैं जिनके द्वारा साधारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और उन्हें साधारण व्यक्ति समझने लगता है। प्रभुपाद जी यहां भगवद गीता का श्लोक कह रहे हैं तात्पर्य में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम, कि हे अर्जुन, ऐसे कई लोग हैं जो अज्ञानी हैं, ऐसे अज्ञानी लोगों को भगवान मूढ़ कहते हैं, वो मुझ भगवान को नहीं जानते। अवजानन्ति माम मानुषीम तनमाश्रित, क्योंकि वे मनुष्य समाज में प्रकट हुआ हूं, साधारण मनुष्य के तरह दिखता हूं, मेरे भी दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, मनुष्यों की तरह चलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, बात करता हूं, मेरा रहन सहन बोलचाल मनुष्यों की तरह है। मानुषीम तनुमाश्रितम, तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं। परम भावम अजानंतो, लेकिन मुझ भगवान के परम भाव को वो नहीं जानते हैं। इसलिए वो ऐसा समझते हैं। तो भगवान निर्गुण आदि होने के बाद भी जब वो भगवान या भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं, लोग उन्हें सगुण समझते हैं। सगुण अर्थात भौतिक तीन गुणों के अधीन। महारानी कुंती, कुंती माता श्रीमद् भागवत के इसी स्कंध में, प्रथम स्कंध में प्रार्थना करती हैं भगवान श्री कृष्ण से, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। वो कहती हैं कि हे कृष्ण, वैसे यहां इस भौतिक जगत में रहने वाले जो जीव हैं आपके माया शक्ति के अधीन रहते हैं, और ये माया शक्ति ने उनके आंखों के सामने मानो की एक पर्दा सा डाल दिया है, जिसकी वजह से उनकी दृष्टि खत्म हो जाती है, उनकी दृष्टि ढक जाती है। माया जवनिका आच्छन्नम, जवनिका का अर्थ होता है एक पर्दा। जब एक पर्दा हमारे आंखों के सामने आ जाता है तो पर्दे के परे क्या है हम नहीं जान सकते। तो माया शक्ति के कारण बद्ध जीवों के आंखों के सामने एक पर्दा सा आ गया है, जिसकी वजह से हम परम सत्य निर्गुण अजह अव्यक्त भगवान को ठीक से नहीं समझते हैं, उनको एक साधारण मनुष्य समझते हैं। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, तो ये मूढ़ लोग जो हैं हे कृष्ण, भौतिक जगत के आपको साधारण मनुष्य समझते हैं। अज्ञादोक्षज, अज्ञाद अज्ञा अधक्ष अधोक्षजम अव्ययम, हालांकि आप अव्यय हैं, आप अधोक्षज हैं, फिर भी आपको साधारण मनुष्य समझते हैं। नटो नाट्य धरो यथा, जैसे एक नट जब मंच पे आ जाता है, कोई नाटक आदि करता है, किसी की भूमिका निभाता है मंच पर, तो अनेक व्यक्ति उनको पहचान नहीं सकते हैं। एक बार हमें याद है कि कोई भक्त एक नाटक कर रहे थे, और दंपति थे पति पत्नी, और कोई राजा रानी की भूमिका निभा रहे थे दोनों, मंच के ऊपर भी पति पत्नी ही थे, और इतना अच्छा उनका वेश था कि उनकी एक छोटी बच्ची थी, वो भी बैठी थी किसी और के साथ, बाद में आई, लेकिन इतना वेश अच्छा था कि बच्ची भी पहचान नहीं पाई, लेकिन जब वो नाटक चल रहा था तब अचानक पहचान गई, अरे ये तो मेरी मम्मी है, और जोर से माँ को पुकारने लगी, मम्मी पहचान लिया। तो कभी कभी मंच के ऊपर वेश होता है नटों का इतना अच्छा होता है कि उनके निकट होने वाले लोग भी कभी कभी समझ नहीं सकते हैं कि ये कौन है वास्तव में, क्योंकि ये बच्ची उनको अच्छी तरह से जानती थी तो फिर पहचान गई। कल भी सुंदर नाटक हुआ राधा पार्थ सारथी मंदिर में, रामलीला हुई, कोई एक दो भक्त थे उनको हम पहचान नहीं पाए, यदि पहले किसी ने बताया नहीं होता कि ये फलाना भक्त हैं, शायद हम पहचान नहीं पाते उनको। तो ठीक उसी तरह ये भौतिक सृष्टि भी भगवान की लीला भूमि है, केवल आध्यात्मिक जगत भगवान की लीला भूमि नहीं है, वो तो है ही, परंतु भगवान इस भौतिक सृष्टि में प्रकट होकर भी अपने लीलाओं को प्रकट करते हैं। ये आखिर ये भी तो भगवान का धाम है, ये भी तो भगवान के धाम का अंश है, भगवान के धाम से बाहर या स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। भगवान यहां आकर भी लीला करते हैं, जैसे एक नट मंच पर अपनी भूमिका निभाता है, तो यहां पर आकर भी भगवान साधारण व्यक्ति की तरह घूमते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, ऐसे प्रतीत हो रहा है, होता है कि वो भी कभी दुखी हो जाते हैं, वो भी कभी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके भी कोई मित्र हैं, उनके भी कोई शत्रु हैं। इसलिए भगवान को समझना आसान नहीं है, केवल उनके भक्त ही हैं जो उनको समझ सकते हैं। भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भक्ति मात्र से तुम मुझ भगवान को जान पाओगे, और जब मुझे जानोगे, वास्तव में मुझे देखोगे, फिर मेरे धाम में प्रवेश कर पाओगे। तो सुखदेव गोस्वामी यहां कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण यहां पर भौतिक जगत में कार्य करते हैं, उससे लोग भ्रमित होकर गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विशेष करके इस निर्गुण शब्द को हमें सही तरह से समझना चाहिए। जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनकी धारणा कुछ और ही होती है। भगवान का स्वरूप निराकार भी है, परंतु केवल निराकार नहीं है। भगवान अंततोगत्वा एक व्यक्ति हैं, और उनके व्यक्ति उनके जो दिव्य शरीर का तेज है, वो है निराकार ब्रह्म। जिस निराकार की उपासना या जिस निराकार के तेज से प्रभावित होकर ज्ञान योगी आदि प्रभावित हो जाते हैं, परंतु इस निराकार ज्योति के पीछे भी है एक व्यक्ति। जैसे सूरज की किरणों के पीछे है सूरज का गोला, कभी कभी दोपहर के समय सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि हम सूरज की ओर देख भी नहीं पाते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य किरणों के पीछे कुछ है ही नहीं, कि केवल प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश का भी कोई उद्गम होता है, कोई स्रोत होता है। जिस तरह सूर्य के किरण जो हैं वो सूर्य से उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये निराकार ज्योति जो है, ब्रह्म ज्योति, ये भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में घोषणा करते हैं। इसलिए निराकार ब्रह्म से ही प्रभावित नहीं होना चाहिए, निराकार ब्रह्म के मूल आधार कौन है ये जान लेना चाहिए, और वो है श्री कृष्ण। इसलिए ईशोपनिषद में भक्त कहते हैं, हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्तं पूषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। कि हे भगवान, ये निराकार का जो तेज है ये मुझे अंधा बना रहा है, इसलिए इस निराकार तेज के पर्दे को हटाइए, मैं आपके सुंदर मुखारविंद का दर्शन करना चाहता हूं। अंधकार दो वजह से होता है, जब रोशनी बिल्कुल नहीं होती है, और दूसरा जब बहुत ज्यादा रोशनी होती है। हमारे आंखों में अचानक कोई टॉर्च जला दे तो हम बिल्कुल देख नहीं पाते हैं। तो अज्ञान के अंधकार में तो लोग भगवान को जान नहीं पाते, वो तो है ही, साथ साथ जब निराकार ब्रह्म ज्योति इसके प्रकाश से, इसके तेज से लोग आकर्षित और प्रभावित हो जाते हैं, तो उस तेज के पीछे जो भगवान बैठे हैं उन भगवान को हम नहीं जान सकते। इसलिए हमें जानना है कि निर्गुण शब्द का अर्थ ये नहीं है कि भगवान का कोई व्यक्तित्व नहीं है, उनके कोई गुण ही नहीं है। गुण अवश्य हैं उनके, परंतु उनके सारे गुण आध्यात्मिक हैं, भौतिक नहीं हैं। हमारे गुण, हमारे शरीर के गुण सब भौतिक हैं, परंतु भगवान के गुण दिव्य हैं। भगवद गीता में 13वें अध्याय में श्री कृष्ण परमात्मा का वर्णन करते हैं, और वो कहते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमाल्लोके सर्वस्य तिष्ठतम। वो कहते हैं कि परम सत्य भगवान की आंखें, उनके हाथ, उनके पैर, उनके सर, उनके शरीर के जितने भी अवयव हैं वो सब जगह फैले हुए हैं। सर्वतः पाणी पादम तत्, पाणी अर्थात हाथ, पाद अर्थात उनके चरण, सर्वतः सब जगह हैं भगवान के हाथ और उनके पैर। सर्वतः अक्षी, उनकी आंखें सब जगह हैं। शिरह, उनके सर सब जगह हैं। श्रुतिमाल लोके, उनके कान सब जगह हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि इसलिए तो भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हुए भी हमारे भोग को आके आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम तो पंजाबी बाग में बैठे हैं और भगवान तो गोलोक वृंदावन में हैं, तो हम भगवान को कुछ अर्पण करेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। हम किसी व्यक्ति को कुछ भेंट देते हैं तो अपने हाथ बढ़ाता है और अपने हाथों से स्वीकार कर लेता है। तो भगवान कहते हैं कि अश्नामी प्रयतात्मना, मैं तो स्वीकार करता हूं, परंतु इतने दूर बैठे हैं कैसे अपने हाथों से स्वीकार करेंगे। हो सकता है मन में संशय हो कि क्या वास्तव में भगवान स्वीकार करेंगे, और करेंगे भी तो कैसे करेंगे जबकि वो इतने दूर बैठे हैं, कैसे हाथ आगे बढ़ा सकते हैं इतने दूर। एक भक्त एक बार बता रहे थे कुंभ मेला की एक घटना, अनेक वर्ष पहले की बात है। जैसा कि आप जानते हैं कुंभ मेले में तो तरह तरह के योगी, साधु, बाबा आदि सब आते हैं। कई ऐसे अष्टांग योगी भी आते हैं। अष्टांग योग के अभ्यास से शायद पूर्व जन्म में भी कुछ किया होगा, कोई सिद्धियां आदि उनको प्राप्त हो जाती हैं। दुर्भाग्यवश इन सिद्धियों के प्रदर्शन को देखकर जन साधारण भ्रमित हो जाते हैं, उनको भगवान मानने लगते हैं। भगवान क्या चीज है, कौन है, नहीं जानते। तो खैर, ऐसे योगी होते हैं जिनके ऐसी योग शक्तियां होती हैं, ऐसी सिद्धियां होती हैं। तो एक महिला थी, वो एक धर्मशाला में थी, उनका कमरा पहले मंजिल पे था और सड़क से थोड़ी दूरी पर था। तो किसी काम से वो अपने कमरे के अंदर से बरामदे में आ गईं, और जैसे ही आईं तो वहाँ सड़क से एक कोई बाबा या योगी गुजर रहे थे। तो योगी ने उस महिला को देखा और अपने हाथ बढ़ा दिए। वो 30-40 फुट की दूरी पे थे सड़क पे, और ये माता जी ऊपर थीं। 30-40 फुट के अंतर में उन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया, वो खड़े थे सड़क पे और उनका हाथ पहुंच गया इनके पास। माते भिक्षाम देही, कि हे माते भिक्षा दीजिए। हम तो कल्पना कर सकते हैं कि वो बेचारी माता जी की क्या दशा हुई होगी। वो तो बेचारी प्राय बेहोश हो गई वहां पर। ये 30 फुट लंबा हाथ इनका कैसे हो गया? ये तो सड़क पे चल रहे थे, अचानक इनके हाथ इतने लंबे हो गए कि यहां तक पहुंच गए। भिक्षाम देही कह रहे हैं। तो ये एक साधारण योग सिद्धि है जिसको प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। हम कहीं से भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि योगी ऐसे हैं जो यहां दिल्ली में बैठकर काबुल के अनार हैं पेड़ से तोड़कर ले सकते हैं। काबुल में अच्छे अनार मिलते हैं। आजकल बहुत कुछ और भी मिलता है, वो दूसरी बात है, लेकिन बैठे बैठे वो अनार ले सकते हैं, काबुल के अनार। ऐसे योगी जन भी होते हैं। अब देखिए, एक साधारण योगी जिसका शरीर जड़ पदार्थों से बना हुआ है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में अटका हुआ है, वो यदि अपने हाथ को इतना लंबा करके किसी माता से भिक्षा स्वीकार कर सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं, योगियों के ईश्वर हैं, तो उनको गोलोक वृंदावन में बैठे बैठे हाथ आगे करना क्या कोई मुश्किल है उनके लिए? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि यदि भगवान के हाथ सब जगह नहीं होते तो हमने अर्पण किए हुए चीजों को वो कैसे स्वीकार कर लेते? इसलिए हमें जानना चाहिए कि भगवान के हाथ हैं, उनकी आंखें हैं, उनके पैर हैं, उनका रूप है, उनका शरीर है, वो एक व्यक्ति हैं, परंतु उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनके जो शरीर के अवयव हैं वो भी आध्यात्मिक हैं, उनकी इंद्रियां हैं वो आध्यात्मिक हैं, उनके गुण वो भी आध्यात्मिक हैं। क्या बद्ध जीव ऐसे कर सकता है कि हमारे आंखें पैर इत्यादि सब जगह हो सकते हैं? और यदि उनकी आंखें नहीं हैं तो वो सब कुछ कैसे देख सकते हैं? उनके हाथ ही यदि नहीं है तो वो सब कुछ स्वीकार कैसे कर सकते हैं? ऐसे प्रभुपाद जी समझाते हैं। दूसरे शब्दों में निर्गुण शब्द का तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान के कोई गुण ही नहीं है। निर्गुण शब्द का तात्पर्य यह है कि भगवान के कोई भौतिक गुण नहीं है, वो इन भौतिक गुणों के अधीन कभी भी नहीं रहते हैं। भगवान चिन्मय है, सच्चिदानंद विग्रह है, अपने गोलोक वृंदावन में सदैव निवास करते हुए भी अपने आप को विस्तार करके समस्त ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं, प्रत्येक कण कण में, अणु में भी अपने आप को प्रकट कराते हैं, हमारे अंतःकरण में भी विद्यमान हैं। तो ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करना हमारे जीवन का परम ध्येय है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ऐसे भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। पक्षपात वो व्यक्ति करता है जो तीन गुणों के अधीन है, वो भेद करता है, वो इन द्वंद्वों में पड़ता है कि ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मित्र हैं, मैं मित्रों का भला करूंगा और शत्रुओं की हानि करूंगा। परंतु जब भगवान असुरों का वध भी करते हैं तो उनका उद्धार करते हैं, उनको मुक्ति दिला देते हैं भौतिक जगत से। इस तरह से हम जान सकते हैं कि भगवान असुरों की हत्या भी करते हैं, तो इसके द्वारा असुरों का भला होता है, उनका उद्धार होता है। तो खैर, इस महत्वपूर्ण विषय की व्याख्या आगे चलकर भी शुकदेव जी करने वाले हैं, और फिर इस दौरान और एक संवाद जो कि नारद मुनि और वसुदेव के बीच में होता है, उसको प्रमाण के रूप में सामने रखेंगे, और फिर प्रहलाद और नरसिंहदेव भगवान की कथा आगे चल के शुकदेव गोस्वामी बताएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हैं? हाँ जी, यह माइक है क्या?
हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, प्रश्न ये है कि हम जो जप करते हैं तो हमारा जप ध्यान पूर्वक हो, अच्छे से हो, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
रोज भागवतम को आके सुनिए। जब हम जप करते हैं, 16 माला जप के लिए लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उन 2 घंटों में हम क्या करते हैं और कैसे जप करने का प्रयास करते हैं, बस वही महत्वपूर्ण है और उसी के कारण हमारा जप अच्छा या बुरा होगा, केवल ऐसा नहीं है। बाकी 22 घंटों में हम क्या करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। उन 22 घंटों में जो हम कार्य करते हैं या जो हमारी चेतना रहती है उसका प्रभाव भी हमारे 2 घंटे के जप में पड़ेगा। तो यदि हम रोज नित्य नियम से भागवत या गीता का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों का संग करेंगे जितना हो सके उतना, तो फिर हमारे जप के समय भी चेतना सही रहेगी। जप के ऊपर ध्यान करना थोड़ा कम मुश्किल हो जाएगा, और साथ साथ जब हम जप कर रहे होते हैं तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, महामंत्र का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, शब्दों को निगल नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखना है कि संपूर्ण महामंत्र हम बोलें। कई भक्त शब्दों को निगल लेते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 कृष्ण कृष्ण राम राम। एक बार हमने देखा था एक भक्त 1 घंटे में 16 माला कर दिए, 1 घंटे में पर 1 घंटे में कर लिए, तो कैसे संभव है? मैंने पूछा कि आप ठीक से कर रहे हो माला? तो हाँ। पूर्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे हो? हाँ करते हैं। फिर जब वो जप कर रहे थे तो हम पीछे गए उनके, सुने, तो क्या सुनाई दिया कि वो आधा मंत्र बोल रहे हैं आधा नहीं बोल रहे हैं। तो उन्हें भी पता नहीं चला कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब आदत पड़ जाती है तो हमें पता नहीं चलता। तो ध्यान से उच्चारण करना है, ध्यान से श्रवण करना है, और अपने दैनिक जीवन को जितना हो सके उतना कृष्णमय बनाना है, तो जप बहुत अच्छा हो जाएगा। और कोई प्रश्न है विशेष करके आज के कथा से संबंधित? हाँ जी, वहां माइक दे देंगे आप, फिर भी आप प्रश्न पूछ लीजिए। अच्छा, प्रश्न ये है कि प्रवचन में ये बताया गया था कि भगवान के तो ना कोई शत्रु हैं ना कोई मित्र हैं, परंतु ऐसे भी देखा जाता है कि नवधा भक्ति में सख्य या भगवान के को अपना मित्र बनाना ये भी एक नवधा भक्ति का अंग है। हाँ अवश्य, भगवान जब व्यक्ति हैं तो उनको कोई मित्र तो होने चाहिए ना, परंतु वो आध्यात्मिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत में सभी भगवान के मित्र हैं, सभी भगवान के प्रेमी हैं, कोई द्वेषी नहीं है भगवान के धाम में। तो जब इस सख्य की बात करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि ये जो नवधा भक्ति है, ये 5 रस हैं, ये शुद्ध प्रेम पर आधारित है। जिस आध्यात्मिक अवस्था में द्वंद्व नहीं रहते, आध्यात्मिक जगत द्वंद्वों से रहित है सदैव, परंतु भौतिक जगत में ये द्वंद्व रहते हैं। तो जब ये बताया जाता है कि भगवान के ना कोई शत्रु है ना मित्र है, वो भौतिक जगत की बात हो रही है। विशेष करके जैसे भौतिकतावादी लोग द्वंद्व की दुनिया में रहते हुए किसी को शत्रु मानते हैं किसी को मित्र मानते हैं, एक का भला करना चाहते हैं दूसरे की हानि करना चाहते हैं, इस दृष्टि से भगवान के कोई शत्रु मित्र नहीं है, भगवान सभी का भला करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी के? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा प्रश्न ये है कि असुरों का तो वध करके भगवान उनका उद्धार कर ही देते हैं, परंतु देवतागण भोग विलास में कभी कभी रहते हैं तो उनको पुनः जन्म लेना पड़ता है मनुष्य योनि में, तो उनका उद्धार कैसे करते हैं भगवान? वैसे जो देवता गण हैं वो भगवान के भक्त ही हैं। इनमें से अनेक ऐसे हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और जब उनकी जीवन की अवधि समाप्त हो जाएगी तो वो तो भगवान के धाम में जाएंगे क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। परंतु ऐसे भी कई देवता होते हैं जो शुद्ध भक्त नहीं होते, मिश्र भक्त होते हैं। अर्थात भक्त तो हैं ही, सेवा करते हैं भगवान की, खुशी से करते हैं, परंतु उनके हृदय में भौतिक कामनाएं भी रहती हैं। इन भौतिक कामनाओं की पूर्ति भी करना चाहते हैं वो। इस भौतिक जगत में भी ऐसे देखा जाता है, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को चाहते हैं, अच्छा भी लगता है भगवान की सेवा करने में, परंतु साथ साथ हमारी भौतिक कामनाओं को भी हम पूर्ण करना चाहते हैं। तो ऐसी इच्छाएं उनकी हैं, इसलिए भगवान ने उनको ऐसा पद प्रदान किया है। ठीक है, मेरी सेवा भी करो और भौतिक इच्छा भी पूर्ण करो। लेकिन भगवान की सेवा करते करते उनका हृदय शुद्ध होते जाता है, और अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते करते असुरों से टक्कर ले लेते हैं, कभी उनका राज्य छीन लिया जाता है, बहुत तनाव होता है, फिर से भगवान के आश्रय में चले आते हैं, त्राही त्राही भगवान बचाइए, फिर भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे करके फिर वो धीरे धीरे से शुद्ध भक्त बन जाते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो देवताओं के तुलना में श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में कोई भौतिक कामनाएं नहीं रहती हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, माइक माइक ले लीजिए।
बहुत धन्यवाद महाराज। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने बताया था कि हमें कुछ भी जो बता दिया गया वैसे ही मान लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें जो भी संदेह हमें आता है उसका हमें प्रश्न पूछना चाहिए, और हम जैसे हमें विनम्रता पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो इस भाव में, विनम्रता पूर्वक श्रवण करने में और जो बताया गया मान लेने में क्या फर्क हुआ?
फर्क ये है कि सोच समझ के प्रश्न करने चाहिए, अर्थात सोचना चाहिए पहले। और यदि कोई ऐसे कोई बात कह रहे हैं जो गुरु साधु शास्त्र से मिलते नहीं हैं, तो हमें प्रश्न करना चाहिए। या हम कुछ बात समझ नहीं पा रहे हैं कोई बात, तो प्रश्न कर सकते हैं अवश्य। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया हमने स्वीकार कर लिया, नहीं। गुरु साधु शास्त्र हमारे प्रमाण हैं। किसी ने कहा कि फलाना ये परम सत्य है, तो हम देखेंगे गुरु साधु शास्त्र में क्या ऐसे कहा गया है, क्या यही परम सत्य है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से सोच समझ के जब प्रश्न किए जाते हैं, ध्यान से जब सुना जाता है, तब ज्ञान का उदय, सही ज्ञान और भक्ति का उदय हमारे हृदय में हो जाता है। ठीक है, परिप्रश्नेन सेवया। तो ये परिप्रश्नेन, संपूर्ण प्रश्न करने की पद्धति जो है ये बहुत प्राचीन है और बहुत अधिकृत है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।